नमस्ते, मेरा नाम इनामुल राजीवन है। शुरू करते हैं हिंदी के पुस्तक गद्य तारा का पहला अध्याय, हरी बिंदी। हरी बिंदी श्रीमती मृदुला गर्ग की कहानी है। मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में हुआ है। उन्होंने 1960 में दिल्ली के विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA पास किया है। उनकी पहली कहानी 1972 में प्रकाशित रुकावट है। 1975 में प्रकाशित उसके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग की पहली उपन्यास है। कठगुलाब, उसके हिस्से की धूप, जादू का कालीन, चित कोबरा, कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, समागम, एक और अजनबी, हरी बिंदी, शहर के नाम आदि मृदुला गर्ग की चर्चित कृतियां हैं। हरी बिंदी। आँख खुलते ही आदतन नज़र सबसे पहले कलाई पर लगी घड़ी पर गई, सिर्फ 6:30। उसने फौरन आंखें दोबारा कसकर बंद कर ली और इंतज़ार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज़ आएगी, उठना नहीं है क्या। पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोलकर देखा, बिस्तर पर वह अकेली है। ओ हाँ, कल रात ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा। तो अब उठने की कोई जल्दी नहीं है। उसने ढेर सारी हवा गालों में भरकर एक लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर एक बार लौट गई, दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बाँह रख कर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक तीव्रता से बज उठी। वह मुस्कुरा दी। उसे कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। राजन रोज़ चिढ़ कर कहता है, यह क्या सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। उसने बाँह उठा ली, तकियाँ खींच कर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर बाहें फैलाकर औंधी लेट गई। उफ, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद है। राजन होता है तो सुबह 6:30 बजे से ही खटर पटर शुरू हो जाती है, खाने चाय नाश्ते की तैयारी और 8 बजे तक दफ्तर के लिए रुखसत। न जाने यह राजन को जल्दी उठने का क्या मर्ज है। खैर, आज वह स्वतंत्र है, जो चाहे करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर जब आँख खुली तो 8:30 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। दूर तक धुंध छाई हुई थी। आज ज़रूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत भली लगती है। जब मालूम नहीं पड़ता कि वहाँ कुछ दूर पर क्या है तो अनायास की आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुराकर सोचा। मुझे धुंध से खुलापन लगता है, सूर्य के प्रकाश में घुटन। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा और इसी विचार से बाल्टी भरने लगी, पर फिर सहसा ठंडे पानी की फुहार ही अपने ऊपर छोड़ ली। दांत किटकिटाते किटकिटाते वह एक गज़ल गुनगुनाने लगी। बड़े तौलिए से खूब रगड़ कर शरीर पोंछा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ पड़ गया। फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और एक बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। राजन होता तो कहता, नीले पर हरा क्या तुख है। दर्पण में दिख रही अपनी ही प्रतिछाया को जबान निकाल कर चिढ़ा दिया, कहा, तुक की क्या तुक है, और खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। दराज खोला तो नज़र बालों पर पड़ गई। उठाकर कानों में लटका लिए। विवाह के बाद से पहनना छोड़ दिए थे, नकली है ना, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़े, राजन कहता है। एक पुराना बैग हाथ में थामकर झपट कर बाहर निकल आई। बरामदे में मुंडू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था, राजन की। उसे देखते ही हथेली में छिपा ली। संजीदगी से बोला, खाना क्या बनाऊं? कुछ नहीं, उसने कहा। नहीं खाएंगे, तुम्हारी छुट्टी। मुंडू की घबराई सूरत देखकर वह हंस पड़ी और बोली, मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बना लेना, तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी मनाओ। बिना इसकी चिंता किए कि ठीक कहाँ जाएगी या क्या करेगी, वह सड़क पर कुछ दूर चलती गई। बस इतना ज़रूर जानती है कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी। कुछ तय करने के पहले ही वर्षा आरंभ हो गई। उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज़ लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, अब टैक्सी ली है तो कहीं ना कहीं जाने को कहना ही पड़ेगा। जहांगीर आर्ट गैलरी, उसने जो सबसे पहले मुंह में आया वह कह दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। विशेष कुछ समझ में नहीं आया, पर आनंद अवश्य आया। आज कुछ भी करने में आनंद आ रहा था। एक चित्र के आगे वह काफ़ी देर तक खड़ी रही। देखा, पूरे कैनवस पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ी चली जा रही है। अरे, उसने सोचा, यह तो बिल्कुल मेरे कुर्ते के समान है। वह ज़ोर से हंस पड़ी, इतने ज़ोर से कि पास खड़ा एक दढ़ियल आदमी उसे घूरने लगा। कहीं यही तो चित्रकार नहीं है? बेचारा, ज़रूर चित्र अत्यंत त्रासद रहा होगा। उसने चेहरे को सानुकूल बनाया और दढ़ियल के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी, और फौरन बाहर निकल आई। बाहर निकलकर ख्याल आया, हो सकता है वह कलाकार न हो, कोई उद्योगपति हो। दो किस्म के इंसान ही दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत। सामंत तो अब रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहेगा, इसने सॉरी क्यों कहा। उसमें भी नफ़े की गुंजाइश ढूंढता रहेगा। वह दुगने वेग से हंस पड़ी। फिर देखा, वर्षा थमी हुई है और आकाश अभी भी काफ़ी गुस्सैल नज़र आ रहा है। पूरा बरसा नहीं, उसने सोचा, और फिर सड़क थाम ली। सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट को देखकर याद आया कि काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है। भीतर जाकर झटपट आदेश दिया, एक गर्मा गर्म टिकिया की प्लेट और एक आइसक्रीम एक साथ। एक साथ? बैरे ने पूछा। हाँ, कोई ऐतराज़ है क्या? जी नहीं, लाया। उसे ठंडा और गर्म साथ खाना बहुत भला लगता है, कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। खाकर बाहर निकली तो सोचा, किसी पास वाले सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेज़ी की एक पुरानी मजाकिया पिक्चर लगी मिल गई, डैनी के की। राजन कहता है, न जाने तुम्हें कैसे पसंद है, मुझे तो उसके बचपने पर हंसी नहीं आती। पर उसे तो आती है, खूब आती है, और फिर हंसी पर हंसी आती है, कभी कभी बेबात आती है, जैसे आज। पिक्चर के दौरान वह आज और दिनों से भी ज़्यादा अधिक ठहाके लगा रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत तो अंधेरे में नहीं दिख रही थी, पर हंसने में वह उससे दो कदम आगे ही था। अदाकार की एक बेचारगी की मुद्रा पर वे दोनों इतनी ज़ोर से हंसे कि उनके हाथ आपस में टकरा गए। सॉरी कहने के विचार से एक दूसरे की ओर मुड़े, पर माफ़ी मांगने के बजाय एक ठहाका और लगा गए। उसके बाद हर बार यही हुआ। हंसी आने पर अनायास वे एक दूसरे की देखते और फिर मिलकर हंसते। पिक्चर समाप्त होने पर वे साथ साथ बाहर निकले तो देखा, 4:30 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो चला है। आकाश यो तना खड़ा है कि बस अब बरसा, अब बरसा। कितना सुहावना दिन है, उसने अपने पड़ोसी से कहा। सुहावना? उसने कुछ अचरज में कहा, या बेरंग? हाँ, कितना सुहावना, सुहावना बेरंग दिन है। वह हंस पड़ा। समझता हूँ, यहाँ सूरज तो रोज़ ही निकलता है, पर धुंध कभी कभी होती है। 8 महीने में आज पहली बार, उसने कहा। और अब मानसून शुरू हो जाएगी। हाँ, आज खूब बरसेगा, उसने कहा, और अनायास ही कॉफ़ी पियेंगे। ज़रूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई तो दोनों भागकर सामने वाले रेस्तरां में जा घुसे। उसने बाल झटक दिए और बोली, आपका छाता कहाँ है? छाता? हाँ, आप लोग हमेशा छाता साथ नहीं रखते? वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। इंग्लैंड में? उसने कहा। कॉफ़ी मंगवाकर दोनों सामने काले पड़े समुद्र को देखते देखते अपने अपने ख्यालों में खो गए। सहसा उसकी आवाज़ सुनकर वह चौंकी। आप क्या सोच रही है, जानने के लिए पैनी का खर्चा करने को तैयार हूँ। दीजिए, उसने हंसकर कहा। उसने निहायत संजीदगी के साथ जेब में हाथ डालकर एक पैनी आगे बढ़ा दी। उसने उसे उठाकर हथेली में बंद कर लिया। बताना, सच सच होगा। मैं सोच रही थी यदि समुद्र में कूद पड़ूं तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूंगी। और आप क्या सोच रहे थे? पर पैनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी को और कस कर बंद कर लिया, जैसे किसी आत्मीय का दिया उपहार। बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने पूछा। नहीं, उसने कह तो दिया पर दिल बैठ गया। बस अब वही घिसी पिटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएंगी। मैं सोच रहा था बारिश बढ़ जाने पर यहाँ से वारली तक का टैक्सी का भाड़ा कितना लगेगा। वह जोर से हंस पड़ी, दुर्भावना से नहीं, हर्ष के अतिरेक से। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे तो आधा, उसने हंसकर कहा। बहुत खूब। उसने यह भी नहीं पूछा कि वह कहाँ रहती है। उसे लगा वह जीवन में पहली बार ऐसे इंसान के साथ बैठी है जो यह नहीं जानना चाहता कि उसके पति है या नहीं, और है तो क्या काम करते हैं। समुद्र के जल पर गिरती वर्षा की बूंदें कितनी अच्छी लगती है। हाँ, फिर दोनों कुछ देर चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज जाता है तो उसके अग्रभाग से चीरता जल चांदी के समान चमकने लगता है, उसने कहा। क्यों? शायद फॉस्फोरेसेंस के कारण। आपने कभी नहीं देखा? नहीं, मौका मिले तो देखिएगा। आप बहुत घूमे हैं, उसने हल्की ईर्ष्या के साथ पूछा। बहुत, अतिथि याद करके मुस्कुरा रहा था। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी जब जहाँ हुआ? वह हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वह समझे या न समझे, पर वह सहमति स्वरूप सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उसने देखा कॉफ़ी समाप्त हो गई और बैरा बिल लिए चला आ रहा है। बाहर वर्षा थमने वाली है, धुंध भी छट रही है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा, वह संकेत झूठा निकला। अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। बिल आने पर उसने स्वयं उठा लिया, कहा, न्योता मेरा था। अतिथि ने कोई बहस नहीं की। शुक्र है, शुक्र है, उसने सोचा। कहीं हर पुरुष के समान पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। टैक्सी लेकर चले ही थे कि घर आ गया। उतरते उतरते पैसे निकालने लगी तो उसने कहा, रहने दीजिए। क्यों? उसके माथे पर शिकन पड़ गई। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी कीमती रहा है। कैसे? मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा, उसने स्निग्ध स्वर से कहा। वह ज़रा ठिठकी कि टैक्सी चल दी, कुछ दूर जाकर आँखों से ओझल हो गई। शुक्रिया।